نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تيسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم. سورة تغابن کی آیت نمبر 9 ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں ایک بڑا خوبصورت میسج دیتے ہیں, اور وہ کیا کہ یوم یجمعکم, وہ دن یاد کرو جس میں سب لوگوں کو جمع کیا جائے گا, یعنی جس دن وہ جمع کرے گا تم کو. کون کرے گا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. کب, کہاں؟ لیوم الجمع, اکٹھا ہونے کے دن. یوم الجمع کیا ہے؟ قیامت کا نام ہے. اگر آپ قیامت کے ناموں پہ غور کریں تو بہت سارے نام ہیں, اور ہر نام اصل میں کسی کی صفت ہوتی ہے. جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام اللہ, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے جو ہم بولتے ہیں, یہ اس کا ذاتی نام ہے, یہ اصلی نام ہے. لیکن اس کے علاوہ 99 نیمز اینڈ ایٹریبیوٹس جو ہیں, اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں. تو لہٰذا کسی کے بھی ایک سے زیادہ نام ہونے, اصل میں اس کے بہت زیادہ باوصف ہونے, بہت ایکٹیو ہونے کے معنوں میں. بالکل اس کو ایسے ہی لے لیجئے کہ جیسے میرے اور آپ کا ایک اصلی نام ہوتا ہے, ہمارا ایک اصل نام ہے, لیکن اس کے علاوہ ہم لوگوں کو ان کی صلاحیتوں پہ بعض دفعہ نام دے دیتے ہیں. جیسے کوئی بچہ ہے تو وہ ذرا بھولا ہے تو ہم کہتے ہیں بھولو, ہاں. اور اگر جیسے کوئی بہت ایکٹیو ہو تو ہم اس کو اس نام سے دیتے ہیں, کبھی بہادر ہو تو ہم اس کو شیر کہہ دیتے ہیں. تو بالکل قیامت کا لفظ اصل میں نام قیامت ہی ہے. یوم القیامہ کون سا؟ کھڑے ہونے کا دن, جس دن لوگ کھڑے ہوں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ قیامت کی کچھ صفات ہیں, اس میں سے ایک صفت کیا ہے کہ اس دن لوگ جمع کیے جائیں گے. اسی وجہ سے اس کو حشر بھی کہتے ہیں. اور اگر آپ آل عمران سورت کی آیتوں میں, جس میں راسخون فی العلم لوگوں کی دعا کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب, اسی کے اندر انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ, تو وہاں اللہ تعالیٰ کی صفت ہے الجامع, وہ جمع کرے گا لوگوں کو قیامت کے دن. تو یہاں یوم الجمع, جمع ہونے کا دن, کون سا دن ہے؟ تغابن. غبن کا لفظ اردو میں بہت عام ہے, خاص طور پہ جہاں بھی کوئی افسری کام, دفتری کام ہو تو ہم کہتے ہیں کہ وہاں یہ غبن کا کیس چل گیا. بہت معروف نام ہے ہمارے لیے یہ لفظ. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذالک یوم التغابن, یہ غبن کا دن ہے. کیا مطلب؟ ایک لفظ ہوتا ہے غبن, ایک بندے کا غبن کرنا, دھوکہ دینا, ادھر ادھر کرنا. لیکن جب تغابن کیا جائے, تفاعل کا وزن ہے, تو اس میں انٹریکشن پایا جاتا ہے. یہ عربی زبان کا ایک بڑا عام اصول ہے, جس طرح معاشرہ, مقابلہ, مناظرہ. تو عربی میں جو اس ساؤنڈ پہ لفظ آتے ہیں نا, معاملہ, مقابلہ, تو اس میں انٹریکشن پایا جاتا ہے. تو گویا کہ تغابن کا مطلب یہ ہے کہ جہاں ایک دوسرے کو دوسرا ایک کو غبن دے دے گا, نقصان دینے کا دن. یہ کیسے ہوگا؟ اس وقت ہم اس کی تفسیر پہ نہیں آ رہے, میں تو اس آیت کے آخری حصے پہ بات کرنا چاہتی ہوں. اور وہ کیا ہے کہ قیامت کے دن اتنے بڑے بڑے غبن ہونے والے ہیں کہ جس کو سورۃ الواقعہ کی بالکل ابتدائی آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت انداز سے پیش کر دیا. کیا؟ حافظۃ الرافیہ. قیامت کیا ہے؟ اس کی صفات کیا ہیں؟ وہ بلند لوگوں کو نیچا اور نیچوں کو بلند کر دے گی. اللہ اکبر. دبے ہوئے, پسے ہوئے لوگ, جن کو لوگ دنیا میں کچھ سمجھتے بھی نہیں تھے, جن کی نہ کوئی صحت تھی, نہ جن کے بارے میں لوگوں کے دلوں پہ کوئی روب تھا, वो उन लोगों से 500 साल पहले जन्नत में जा रहे होंगे कि जो अभी तक अपने आमाल नामों की पटारियां खुलवाए बैठे होंगे, जो अपनी जिंदगी भर अल्लाह की नेमतों को जो उन्होंने अपना हक समझ के खाया पिया था लेकिन उसका हक दिया नहीं, उन सब को वहां खड़ा किया जाएगा कि आओ जरा अपनी जिंदगी के मामलात खोलो, बताओ कि तुम जिंदगी में क्या करके आए और कैसे करके आए। अल्लाह के नबी की हदीस का खुलासा है कि जो गरीब, कमजोर, मुफलिस किस्म के लोग हैं वो आम लोगों से 500 साल पहले जन्नत में दाखिल किए जाएंगे। इसको आप समझना चाहें तो एयरपोर्ट का कोई मंजर ले आए सामने, एक वो बंदा है जो इतने बड़े बड़े सूट केसेस उठाए, ओवरवेट भी है और अंदर कुछ मना की हुई चीजें छुपाए बैठा भी है, जब वो खड़ा होता है तो उसकी जान पे बनी होती है और उसको वहां कितने मामलात पेश आते हैं। इसके बरक्स एक कोई सामान के बगैर हाथ में एक ब्रीफ केस या एक पर्स लिया आता है और आराम से वहां से अपना बोर्डिंग पास लेके चला जाता है। तो उस दिन को जहन में लाके सोचिए कि आज दुनिया के दबे पिसे कमजोर लोग वहां आम अमीर लोगों की निस्बत आगे जाएंगे, क्योंकि सुम्मा ला तुसलुन्ना यौमैज़िन अन्नईम, अल्लाह सुबहाना तआला का फैसला क्या है कि तुम जरूर नेमतों के बारे में पूछे जाओगे। आज हम दुनिया में नेमतों को अपना हक समझते हैं हालांकि ये आजमाइश है। मैं इसको इस तरह महसूस कर रही हूँ इस वक्त बात करते हुए कि आप किसी भी शॉपिंग मॉल में गए, क्यों गए भला, कि देखिए घूमिए फिरिए, मुख्तलिफ आइल्स हैं, कहीं फूड, कहीं खाना, कहीं कपड़े, कहीं जूते, कहीं कुछ कहीं कुछ, जाइए खैर से जाइए घूमिए, कॉट ले लें हाथ में, छोटी लेनी है कि बड़ी, जो पसंद आता है लेते जाएं लेते जाएं, और उसके बाद फिर वहां काउंटर पे आके खड़े हो जाइए, डालिए एक एक चीज़ काउंटर पे और उसका हिसाब भी दें, वजन भी दें, फिर उसको वहां से उठा के गाड़ी तक उठा के लेके जाएं। मेरा ख्याल है कमोबेश हर दिन ही किसी ना किसी तरह से आपको इसका इत्तेफाक होता होगा अगर आप खुद शॉपिंग करती हैं तो। बस ये है क़यामत का दिन, ये दुनिया एक शॉपिंग मॉल है, इसके मुख्तलिफ फ्लोर हैं। अल्लाह सुबहाना तआला ने हम सबको यहाँ भेजा, किसी की कॉट छोटी है, किसी की बड़ी है, उम्र के हिसाब से, उसकी वसत के हिसाब से। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह किसी बंदे को, किसी नफ्स को उसकी वसत से ज़्यादा नहीं आजमाता। कोई सेहतमंद बहुत है, कोई बीमार बहुत रहता है, हम कहते हैं बीमार कौन है, बेचारा, क़यामत के दिन सेहतमंद बेचारा बन जाएगा क्योंकि उससे उसकी सेहत के एक एक दिन का हिसाब होगा, उसकी मेहनत का हिसाब होगा, क्या किया ये नहीं पूछा जाएगा, ये भी पूछा जाएगा क़यामत के दिन कि तुम क्या कर सकते थे और तुमने नहीं किया। जहन में लाइए जरा इस बात को, क्या किया ये तो हम सबको दिखता है, आपको मेरा भी इस वक्त दिख रहा है, और शुरू में सिस्टर जो बातें कर रही थी ठीक है ये हर जगह ही लोग करते हैं लेकिन मुझे बिल्कुल ही नहीं पसंद अपने बारे में कोई सबका लहका सुनना, कौन कहाँ से कैसे आई बैठी खड़ी हुई क्या हुई, ये आपका मामला तो है ही नहीं है, ये तो मेरा और मेरे रब का मामला है। लेकिन होता है लोग करते हैं ये बातें और ये बुरी बात नहीं है, ना आप सोचें कि आपने कोई बुरी बात की, ये होता ही है, लेकिन आप सोचिए कि इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं कि मैंने कुछ किया, लेकिन आपको वो बिल्कुल नहीं दिख रहा कि जो मैं कर सकती थी और नहीं किया। हम में से हर एक इसको अपने लिए एक मेयार बनाए, बस तो होता क्या कि हम जो करते रहे होते हैं ना उसी पे फूलते रहते हैं, अकड़ने लगते हैं, जो अंदर हवा भरती है, जैसे वो जोंक की मिसाल दी थी एक लेक्चर में कि जोंक को जितना खून मिलता है वो चूसती जाती है, मोटी होती जाती है, हम बस दफ़ा जो कर रहे होते हैं उसी पे बड़ा करते हैं, मान करते हैं, शुक्र है ये तो करती हूँ, शुक्र है ये तो किया, नुकसान क्या होता है कि जो कर सकते हैं वो नहीं करते। क़यामत के दिन ये भी पता चलेगा क्या किया और क्या कर सकते थे और नहीं किया, वहाँ फिर उसको हसरत कहते हैं। आप पढ़ेंगे सूरत मरियम में यौमुल हसरा, क़यामत का दिन हसरत का दिन होगा। आज बात कामयाबी पे करने बैठे हैं, इस आयत को चुना, हालांकि लफ्ज़ कामयाबी जिसको उर्दू में आप कामयाबी कहते हैं, इंग्लिश में आप इसको सक्सेस कहते हैं, और ज़ुबानों में भी इसके बहुत सारे लफ्ज़ होंगे, सिर्फ अगर इसके अरबी ज़ुबान के दो लफ्ज़ आपके सामने आज रख दूं, क्योंकि अरबी ज़ुबान में एक अमल के कई मुख्तलिफ दर्जे हैं, लेकिन बड़े फैमिलियर, आसान सी बात, मुश्किल नहीं, ताकि मैं और आप उससे फ़ायदा उठा सकें, तो कामयाबी को अरबी ज़ुबान में फलाह कहते हैं। पहली ही बड़ी सूरत अल-फातिहा के बाद सूरत अल-बकरा, पहले ही रुकू के आखिर में अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं औलाइक हुमुल मुफ्लिहून, ये हैं वो लोग जो फलाह पाने वाले हैं। और लफ्ज़ फलाह के अंदर फलाहा, काटना, फाड़ना, चीरना, मेहनत, जिद्दोजहद है। किसान को फलाह कहते हैं क्योंकि वो काटता है। फालिह का लफ्ज़ भी आता है अरबी में। अरबी जुबान में सिर्फ इस एक रूट से, लफ्ज़ फलाह से, कुरान पाक में 40 आयतें हैं। 40 आयतों में 40 टाइम आया है। अगर आपको उनके नंबर चाहिए, लिस्ट बाद में मेरे से ले लें, यहाँ ज़रूरत नहीं है। अगर कुरान की कोई क्लास होती जिसमें बाकायदा स्टूडेंट्स को प्रिपेयर किया जाता है तो रेफरेंस बोल देते हैं हम लोग, लेकिन ये एक जनरल दर्स है। 40 दफ़ा अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहीं अल मुफ्लहून, कहीं तुफ्लहून, कहीं फिर मुफ्लहून, फिर कहीं अल्लाह सुबहाना ताला ने कद अफलहल मोमिनून के लफ्ज़ के साथ, फिर इसी तरह अल्लाह ताला की ज़ात ने फलाह लफ्ज़ के साथ, कहीं युफ्लह, फिर इसी तरह तकरार के साथ इस लफ्ज़ को इस्तेमाल किया है, जिससे पता चलता है कि ये लफ्ज़ बड़ा अहम है। इस लफ्ज़ के अंदर छुपी हुई चीज़ मेहनत है, खोदना, खुजाना, नीचे की चीज़ ऊपर, ऊपर की चीज़ नीचे आती है। क़यामत के दिन भी तो एक बहुत बड़ा जलजला ही आने वाला है ना। इन्ना जलजलत साथ इला शही नाजीम, सूरत हज के शुरू में अल्लाह ताला कहते हैं बेशक क़यामत का झटका, क़यामत का जलजला बहुत बड़ी चीज़ है। और अमूमन आप देखते हैं कि जलजलों के बाद हालात बदल जाते हैं, नीचे की चीज़ें ऊपर आती हैं, माइंस ऊपर आ जाते हैं। आपने सुना होगा एक जगह जलजला आया और उसके बाद वहाँ से कितनी कीमती धात निकल आई। इसी तरह ऊपर की चीज़ें नीचे चली जाती हैं। आज से 4-5 साल पहले एबटाबाद में एक बहुत बड़ा जलजिला आया था। मैं अमेरिका में थी उस वक्त, तो एक सिस्टर थी, उस शादी होकर अमेरिका आई। क्लास में एक दिन मुझे पता चला कि ये वहाँ से आई हैं, तो मैंने उनसे बात की, तो उन्होंने बताया कि एन उस वक्त जब जलजिला आया मैं स्कूल में थी, कॉलेज या स्कूल जो भी होगा, यंग थी। और कहती हैं कि हम लोग कैसे बच गए कि हमने दरवाजे की चौखट में अपने आप को खड़ा कर लिया, तो इर्द गिर्द चीज़ें गिरी, लड़कियां भी मरी, लेकिन अल्लाह ने बचाना था बचा लिया। सुबह घर से आए तो पढ़ने की नीयत से आए, कुछ नहीं पता था क्या होगा, और जब वहाँ से निकले तो सारा शहर जो था वो तबाही की एक तस्वीर बना था। लेकिन जो बात इस वक्त आपके साथ शेयर करने की, वो कहती हैं कि जब मैं रोज़ अपने घर से जाती थी, तो मैं जाती थी ना तो इस तरफ मेरे पहाड़ आता था, हिल्स, तहली आपको बताई है, कहती। लेकिन जलजले के बाद वो पहाड़ वहाँ बिल्कुल नहीं था, और बाद में हमने देखा तो वो पहाड़ इधर था। इस तरह तलपट, हाफिजत और रुआफी, नीचे की चीज़ें ऊपर आएंगी। आज हम जाहिर दिखाते हैं अंदर छुपे में, कल जाहिर खुलेंगे और बातें छुपे होंगे। वह हुस्सिला मा फिस सुदूर, सूरत अलादियात में अल्लाह ताला कहते हैं उस दिन तो अंदर की बातें खोली जाएंगी। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ध ज़िलज़ालहा वख़रजतिल अर्ध अस्क़ालहा वक़ाल अल इंसानु मा लहा, हिला मारी जाएगी ज़मीन, इस तरह झटके पे झटका आएगा और इंसान कहेगा इसको क्या हो गया। व युहद्दिसु अख़बारहा, उनके अंदर की खबरें खोल दी जाएंगी। क्यों? बिअन्ना रब्बका अवहालहा, इसलिए कि तेरे रब ने इस बात का हुक्म दिया, वही की। तो नतीजा क्या निकला कि क़यामत के दिन के मनाजर बड़े फ़र्क होंगे। तो फलाह के लफ्ज़ को जहन में आज रखते हुए अपनी असल कामयाबियों का हदफ तय करें हम। असल कामयाबी क्या है कि क़यामत के दिन कौन कामयाब हुआ। फलाह के लफ्ज़ को अगर आप देख लें तो कुरान पाक में अगर 40 दफ़ा है, तो दूसरा लफ्ज़ जिसको आप कामयाबी के लिए इस्तेमाल करते हैं वो फौज है। हमारे यहाँ बड़ा मारूफ नाम है, हो सकता है आप में से भी कोई सिस्टर हो, फौजिया, फायजा, फायज, ये लफ्ज़ फौज के साथ है। कुरान पाक में 29 टाइम इस्तेमाल हुआ ये लफ्ज़, 27 आयतों में। दो आयतें ऐसी हैं कि जिसके अंदर ये लफ्ज़ दो दफ़ा इस्तेमाल हुआ है। उसी में से ये आयत आज मैंने आपके सामने रखी कि असल कामयाबी क्या है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि असल कामयाबी यौमुल जम यानी क़यामत के दिन कामयाब होने की है। दुनिया की कामयाबियाँ क्या है? किसी की नज़र में PhD कर लेना कामयाबी है, किसी के पास मेडिकल कॉलेज में से फारिग हो जाना एक कामयाबी है, कोई इंजीनियर कामयाब है। आपकी नज़र में आपकी बेटी की कामयाबी, उसका एक अच्छे घर में शादी हो के सुखी रहना। शादी के बाद की कामयाबी क्या है कि अल्लाह ने उसको दो बेटे दो बेटियां दे दी। शौहर बहुत प्यार करता है, घर वाले बहुत कदर करते हैं। दुनियावी एतबार से तो कामयाबियाँ बहुत मुख्तलिफ हैं, लेकिन कभी आपने सोचा कि एक शख्स जो दुनिया में कामयाब हो भी गया, कहीं दूसरे एंगल में वो फेल हो रहा है। रेंगलर की डिग्री करने वाला, दुनिया के बड़े बड़े फोरम्स में खड़े होने वाला, अगर 5 वक्त नमाजी नहीं तो नाकाम है। तो ये है क़यामत की मंजर, यौमुत तगाबन, रिजल्ट्स चेंज हो जाएंगे। पहली सूरत अभी तक हमने जो आपसे मैंने शेयर की है वो क्या है कि दौलत के एतबार से चेंजेस आ जाएंगी। गरीब, गुरबा, मिस्कीन, जिसको हम कुछ समझते ही नहीं है, वो कल वहाँ बहुत अमीर होगा, अल्लाह के नबी सल्लम के दौर में एक शख्स आपके सामने से गुजरा, बिल्कुल मुफलिस और कल्लाश। आपने पूछा, साथियों ये बताओ कि तुम्हारे इस शख्स के बारे में क्या ख्याल है? कहा, अल्लाह के नबी बस क्या बताएं, आम सा शख्स है, मुफलिस है, कल्लाश है। कहा, अगर ये किसी को दावत पे अपने घर बुलाए तो कोई आएगा? किसी की ये दावत करे तो क्या कोई इसकी दावत एक्सेप्ट करेगा? वी डोंट थिंक सो। कौन आता है गरीबों के घर? बड़ों के घर आते हैं या बड़ों के पास जाते हैं? सच्ची जो बात है, दुनिया का असूल यही है। कहा, अच्छा ये बताओ कि अगर कहीं कोई दावत हो, कोई इसको बुलाएगा? कहा, नहीं। और यही होता है, बड़ी बड़ी दावतों में बड़े बड़े लोग आते हैं। अच्छा, कहा अगर ये किसी के घर बेटी का पैगाम डाले, रिश्ता के मांगे तो कोई देगा? कहा, नहीं देगा। इस तरह की दो चार बातें। उसके बाद फिर अल्लाह के नबी ने जो बात की, इसका खुलासा क्या है कि आपने फरमाया कि कुछ लोग दुनिया में ऐसे हैं जो ये सिम्टम्स हैं कि वो किसी को बुलाएं तो कोई आए ना, कहीं दावत हो तो इनको ना बुलाएं, रिश्ता करें, रिश्ता मांगे, कुछ ना हो, लेकिन अल्लाह के यहाँ उनका मुकाम क्या है कि अगर वो अल्लाह के भरोसे पे कसम खा लें तो अल्लाह ताला उनकी कसम को सच्चा करने के लिए अपने इरादे को बदल देता है, वो कर देता है जो नहीं होता। हज़रत यूनुस इसकी मिसाल है, आप सूरह यूनुस में जाके पढ़ लीजिए। अज़ाब का वक्त आया, कोई नहीं था, लेकिन थक गए थे कौम की इसलाह की कोशिशें करते करते। नतीजा क्या हुआ कि एक दिन गुस्से में कह के चल पड़े, मैं जा रहा हूँ, थक गया तुमसे, और देखना 3 दिन के अंदर अजाब आ जाएगा। आना नहीं था। अब अल्लाह के ऊपर इतनी बड़ी बात कह दी, और नबी के लिए इजाज़त नहीं होती जब तक कि अल्लाह ना चाहे कि वो किसी बस्ती को छोड़े। यही उनका सब्र होता है, यही उलुल अज़्मी है। जब निकले तो एहसास हुआ कि ये क्या हुआ, मालिक से पूछे बगैर आ गया। खैर, वहाँ से निकले, कश्ती में बैठे, अल्लाह ताला से कौन भागे, हाँ, एन बीचों बीच कश्ती भंवर में फंस गई। कश्ती में और लोग भी थे, कश्ती रुक गई। उस दौर का रिवाज या शरीयत क्या थी कि जब कोई गुलाम अपने आका की मर्जी के बगैर भाग जाए, जैसे आप कह सकते हैं कि कोई मुलाजम पैसे लेके भाग जाए या कोई भी इस तरह का गबन धोखा करे, तो वो कश्ती रुक जाती थी। जब वो कश्ती रुकी तो लोग कहने लगे कि हम में से कोई एक ऐसा है जो अपने मालिक की मर्जी के बगैर भागा। यानी उस वक्त में पैसों के होते थे, पेट गुलाम होते थे, तो गोया कि अल्लाह ने हिफाजत का जिम्मा था। अब बाकी तो समझते ये समझ गए कि या का नाबुदू व या का नस्ताइन, मैं अपने मालिक की मर्जी के बगैर भागा हूँ। शर्मसारी भी थी और दिल के ऊपर खौफ भी था कि मेरी वजह से सारी कश्ती डूब जाएगी, क्योंकि चलती कश्ती खड़ी थोड़ी रहती है, या तो वो डूबती है या चलती है। अल्लाह के हुक्म को पूरा करना या अल्लाह की तदबीर को पूरा करना था, कश्ती से छलांग लगाई, पानी में चले गए। अल्लाह ताला को पता था कि अभी मैंने यूनुस को डुबोना नहीं है। मछली को नीचे कश्ती बना दिया और कहा कि मछली मुँह खोल और यूनुस को अंदर ले जा, और देखो इसको दांत ना लगाना। फिर आगे जो हुआ वो आप पढ़ना चाहें तो सूरह अल-अंबिया में पढ़ लें, तफसील से आता है कि ला इलाहा इल्ला अंता सुभानक इन्नी कुंतु मिनज़्ज़ालिमीन, नहीं है कोई इलाह तेरे सिवा और मैं ही जालिम हूँ। फिर वहाँ जो हुआ उसके बाद अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल की, फरिश्ते पहचान गए कि ये आवाज़ तो पहले भी आती है। जब गौर किया तो ये तो यूनुस की आवाज़ है, कहते हैं अर्श पे इनकी आवाज़ सुनी गई थी। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो अच्छे दिनों में अल्लाह को याद करता है, मुश्किल या किसी बुरे वक्त में अल्लाह ताला उसकी जल्दी सुन लेता है। और यही हुआ उनके साथ भी, अल्लाह ताला ने उनकी बात सुन ली। इनका तो मामला इधर है, इसको तो छोड़ें, जो बात कहने वाली है वो पीछे है। अब ये तो चल पड़े, पीछे कौम का क्या हाल था, डर गए। याद रखिए, लोग नेक लोगों के सामने उनकी कदर नहीं करते, जब वो पीछे होते हैं नहीं होते तो बड़ी हसरत करते हैं। यही नबियों के साथ हुआ, यही आज अल्लाह के नेक बंदों के साथ अमूमन होता है। कौम को डर पड़ा कि ये क्या हुआ। अल्लाह ताला ने यूनुस अलैहिस्सलाम की बात को सच्चा करने के लिए अजाब के आसार पैदा कर दिए। काली काली घंघोर घटाएं आने लगी, बस समझ गए, कहने लगे वो अल्लाह का बंदा, बद्दुआ दे के गया, अब यही होगा। फौरन सब जमा हुए, क्या करें, कहा ये अजाब नबी था, नबी को झुठलाना कोई छोटी बात है, चलो क्या करो, तौबा करो। खुले मैदानों में गए, घर के सारे बुत तोड़े, सारी नाफरमानी की चीज़ें तोड़ी, जाके खुले मैदानों में सजदों में गिर के रोने लगे कि अल्लाह हमें माफ़ कर दे, अल्लाह हमें माफ़ कर दे। अल्लाह कहते, अच्छा माफ़ी मांगते हो, फिर तो नहीं ये करोगे, पक्की बात है? हाँ पक्की। उनसे अहद पैमान लेकर कहा, जाओ मैं अजाब को वापस पलटा देता हूँ। अजाब के आसार बने, थोड़ी देर में पलट गए। कौम क्या समझती रही कि ये हमारे रोने धोने से पलटे, असल मामला क्या था कि यूनस की कसम को सच्चा करने के लिए अजाब दिखा दिया, लेकिन देना नहीं था तो नहीं आया। फालु लिमा यूरीद, क्या समझते हैं आप? कभी अल्लाह के किसी बंदे को हकीर ना जाने। दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बहुत मोटी मोटी जोंके होते हैं किसी सोसाइटी की, लोग उनकी इतनी इज्जत करते हैं, लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया कि क़यामत के दिन एक काफिर को अमाल नामे में तोला जाएगा और उसका वजन मच्छर के पर के बराबर भी नहीं होगा। अब क्या बात है, हाफिज़तुर राफिया, बात वाज़े। जब दुनिया में बहुत टोर टप्पे वाले लोग होते हैं ना, बड़ी धूम धमक्का है, ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह एक और एंगल, क़यामत के दिन ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर होने का क्या है कि कुछ लोग दुनिया में लोगों को बहुत नेक दिखते हैं किसी सलाहियत की वजह से या किसी निस्बत की वजह से, एसोसिएशंस की वजह से। मिसाल दे देती हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात, उनसे ज़्यादा इज्जत वाला सोसाइटी में कौन होगा, लेकिन उनके रिश्तेदार, बीवियाँ, अजवाज मुतहरात, अब उनको तो नबी की वजह से बचा ही लेना चाहिए ना, लेकिन आपको पता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों को क्या कहा करते थे कि रुब्बारियतुन कासियातुन, रुब्बा कासियातुन आरियातुन, उठो इबादत करो, तहज्जुद पढ़ो। क़यामत के दिन कितनी ही लिबास वाली औरतें बेलिबास आएंगी। ये कौन सी बेलिबास है आपको पता है? अंतुम लिबासुल्लहुन्न वहुन्न लिबासुल्लकुम, शोहर और बीवी। क्या आज नबी की बीवियां हो, कल क़यामत के दिन नबी की बीवी नहीं बनोगी। मिसालें आप पढ़ लें सूरह तहरीम में, हज़रत लूत और हज़रत नूह की बीवियों की दी गई। तो बाज़ दफ़ा हमारे शोहर अच्छे होते हैं तो हमें भी साथ इज्जत मिल जाती है, हम भी इज्जत वाले बन जाते हैं। इमाम मस्जिद साहब हैं तो बेगम की भी बड़ी इज्जत है, लेकिन अगर वो दीन में पीछे हैं, नमाज रोज़ा नहीं, तो अल्लाह तआला कहते हैं यौमुत्तगाबन। इस तरह बाज़ दफ़ा हम बज़ाहर लोगों के अंदर बहुत नेक मारूफ हो जाते हैं। आप किसी पे बात ना करें, मैं अपने ऊपर करती हूँ। जितना मुझे अपने ऊपर इस बात पर रोना आता है, शायद ही किसी बात पे आता हो कि जो लोग मेरे बारे में सोचते हैं या सोच रहे हैं, अगर अल्लाह की नज़रों में वो ना हुआ तो मैं किस जगह पे मुंह छुपा के क़यामत के दिन रोऊंगी। आपको शोहरतें मिल जाएंगी, आपको प्रोग्राम्स मिल जाएंगे, आपके पास प्लानर आएंगे, फलां इधर कल इधर, रात उधर चौधरी इधर, ये सुबह क्लास शाम क्लास, ये तो आपको पता है ना, लेकिन मैं अंदर से क्या हूँ? दर्स देना क्या बड़ी बात है? यहाँ भी 2-2.5 घंटे के बाद हम डिसमिस हो जाएंगे। क्या आप कल रात तक मेरे साथ होंगे या आज शाम तक रहेंगे? दो दर्सों के बीच में अगर 1 घंटा भी है, मैं कहती हूँ दर्स देने के दौरान आप मुझे अल्लाह के हिसाब से नहीं बचा सकते। अगर फ़ख्र और तकब्बुर हुआ, एंड पे इंशाल्लाह दूसरे सेशन में आपको एक लिस्ट दूंगी कि कामयाबी के लिए क्या खूबियाँ चाहिए और क्या बुराइयाँ जो हमें कामयाब नहीं होने देती। तो जाहिर पर मत जाए, बस दफ़ा एक इंसान अपनी ही नेकियों पर या दूसरा उसको भुला देता है और वो इस तरह के काम करता है। तो यौमुत तगाबुन, असल फिक्र क्या हो कि क़यामत के दिन कामयाबी हो जाए। सूरत आल इमरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं फमन ज़ुख़्ज़िहानिन नारी वो उदखिलल जन्नता फ़कत फ़ाज़ फ़ौज़ नज़ीम। ये है कामयाब, जहन्नुम के अज़ाब से बचा के फिर जन्नत मिल जाए। ये क्या बात हुई, फ़र्क है? देखिए, एक है जन्नत में जाना इंशाल्लाह, तौहीद होगी ना दिल में, शिर्क से पाक होकर के अल्लाह एक राई के दाने के बराबर ईमान पे भी बिलाखर जन्नत दे देगा उम्मत मुस्लिमा को। लेकिन उससे पहले जो अजाब की भट्टियाँ, जो उससे पहले पुल सरात पे कटते हैं, और उससे भी पहले निज़ा की सख्तियाँ, और उससे भी पहले ज़िंदगी के बीमारियाँ, दुख जो हमारे गुनाहों से आती हैं, ये भुगतनी पड़ेंगी। इस पर एक पूरा लेक्चर है, मैं इसलिए दोहराना नहीं चाहती कि गुनाहों के क्या असरात हम पे आते हैं और दुनिया में से ले के आखिरत तक के स्टेप्स बोले। मैं 2-3 दफ़ा ये दर्स हुआ था और होपफुली वेबसाइट पे आज नहीं है तो कल आपको कभी मिल ही जाएगा कि किस तरह हम अपने ही गुनाहों की वजह से फिर आजमाइशों और तकलीफ़ों का शिकार होते हैं। जिसको हम दूसरे का जुल्म कह रहे होते हैं ना, वो हमारा गुनाह होता है। जिसका 100% गुनाह हम अपने दूसरे इंसान पर डालते हैं ना, वो हमारे किसी और गुनाह की सज़ा है। मिसाल है कि हमारा बच्चा हमारे साथ नाफरमानी करता है तो हम चीख रहे हैं, हाय मैंने इतनी कोशिशें की, हाय मैंने इतनी मेहनत की, मैंने इसको पढ़ाया लिखा, मैं कहाँ नहीं गई, मैं तो इसको मस्जिदों में लेके फिरती थी। मान लिया 100% आप अपने बच्चे की तरबियत के मामले में हक पे हैं, फिर बच्चा क्यों खराब हुआ? क्योंकि किसी ऐसे मामले में आप अल्लाह के साथ अड़ी कर चुके हैं। हम अल्लाह के साथ नाफरमानी करते हैं, हमारे छोटे हमारी नाफरमानियाँ करते हैं। कुरान में मौजूद है, गालिबन सूरह अलनाम है, कि 3 किस्म के अजाबों की बात है, कि जिसमें एक अजाब यह है कि अल्लाह तुम्हारे मातहतों को तुम्हारा नाफरमान बना देगा। शैतान हमारा अपने तरफ ध्यान नहीं जाने देता, नतीजा क्या होता है, हम दूसरों को समझते हैं, लेकिन क़यामत के दिन ये सारे पोल खुल जाएंगे। पढ़ाने के दौरान दिल में रियाकारी है, दिखावा है, शोहरा है, मकसद ही ख़त्म है, वो है ही नहीं नीयत जिसके लिए कामयाबी थी। तो मेरा ये दर्स देना दिलाना आपकी नज़रों में आज अच्छा है, क़यामत के दिन मुझे रुसवा कर दिया जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको बचाए। बल्कि मेराज के सफ़र में आपने देखा कि कुछ लोगों की ज़ुबानें कैंचियों से काटी जा रही थी, कहीं आग की कैंचियों का तस्कर है, कहीं कैंचियों का। कहा ये कौन है? कहा ये फितने के खतीब थे, बातें बड़ी खूबसूरत करते थे, फितने फैला के चले जाते थे, दैट्स इट, अब क्या करेंगे आप। आपने देखा कुछ लोग हैं वो अपने पेट के अंदर से अंतड़ियों को बाहर पाकर उसके इर्द गिर्द गधे के तरह, जैसे कोल्लू का बैल है इस तरह चक्कर लगा रहे हैं जहन्नुम में। कहा ये कौन है? कहा ये वो आलिम है जो कहते थे करते नहीं थे। तो कौन बचे इन दरसों दरूस से, और कौन बचे इन जाहरी नेकियों से और अपनी शोहरतों से? क़यामत के दिन बाज़ दफ़ा लोग जो दुनिया में पूजे जाने की हद तक मोतकीदान के उनको सजदे तक कर लेते थे, शख्सियत परस्ती के नाम पे लोग इस तरह बाज़ दफ़ा बुजुर्गों के आगे झुक पड़ते हैं, सलामे करते हैं, वो आग में होंगे। आप दूसरे बारे में पढ़ लीजिए, इस तबर्रज़ीन तबल्लज़ीन तुबियो, पूरी तकरार है वहाँ कि तुम उनके पीछे आके बंद करके चल रहे थे, वहाँ जाके एक दूसरे पे लानत कर रहे होंगे कि तुम ना होते तो आज हम जहन्नुम में ना जाते। वो कहते तुम आए हो तो हमारा अजाब बदल गया। एक जगह आता है कि वो कहेंगे अल्लाह इनको दुगना अजाब दे, इनको देख के भटके थे, ये गालिबन सूरत अलअनाम की आयत है। तो वो कहेंगे इनको दे, हमने इनको कब कहा था, आंखें बंद करके हमारी सुनते थे। अल्लाह कहता है लिकुल्लिन, दोनों के लिए दुगना, तुम सब डबल टेम्परेचर पे जल जाओ, तो नहीं बच सकते। यौमत तगाबुन। अब इस बात को सुनकर एकदम दिल डरता है, तो इंसान फिर कहता है कि अच्छा इतनी सख्त बात है, और आप देखिए कि इतना कड़ा हिसाब कौन करेगा कि जो इन्नहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर है। सूरत मुल्क में भी आता है ना कि वो कौन है, लतीफ़ुन ख़बीर। अबू ज़र के बारे में जो बड़ी प्यारी रिवायत है आपने कसरत से सुनी होगी कि अल्लाह के नबी ने कहा कि अबू ज़र कश्ती मजबूत कर लो कि दरिया बड़ा गहरा है, और अपने आमाल की छान पटक कर लो क्योंकि हिसाब लेने वाली ज़ात बड़ी बारीक बीन है। तो आज तो छोटी छोटी मशीनें ईजाद हो गई कि आपके जिस्म में एक हल्का सा सेल भी बिगड़ने लगता है तो वो सीटी स्कैन और वो दूसरी मशीनें आपको दिखाती हैं, तो वो ज़ात नहीं दिखा सकती। एयरपोर्टों से आप गुजरते हैं तो क्या आप नहीं देखते कि आपको ऐसे मशीनों से गुजारते हैं जहाँ स्कैनर लगे हुए हैं? यहाँ मुझे नहीं याद, लेकिन अमेरिका में अब आम लोकल स्टेशन पे भी है, एक कमरे के अंदर से गुजारते हैं, बस कोई चेकिंग नहीं, कुछ नहीं, कोई बंदा नहीं दिखता आपको पूरे एयरपोर्ट पे, घर से निकल कर वापस जाने तक हर जगह अक्सर मशीनें होती हैं। तो वो मशीन क्या है कि वो आपके पूरे जिस्म के अंदर की तस्वीरें कहीं दूर बैठे लोगों को कैमरों में दिखा रही होती हैं। मैंने ये औरत से पूछा ये क्यों दिखाते हो, क्या होता है? कहती यस, लोग कोशिश करते हैं अपने जिस्म के अंदर भी कुछ छुपा के चीज़ें ले जाएं, इस तरह का रिस्क है। तो मैं सोचती हूँ कि इनकी मशीनें जब हड्डियाँ फेफड़े और एक्सरे को ही देख लीजिए ये दिखा सकती हैं, अल्ट्रासाउंड में अंदर से बच्चे के दिल की धड़कन दिखा सकती हैं, तो ये बताइए कि क्या वो ज़ात जो यौमुल जम है और जो अलहासिब है और असरुल हासिबीन है, सूरत अलनाम में आता है वह असरुल हासिबीन, वो बड़ा तेज़ हिसाब लेने वाला है, क्या उससे मैं और आप बच सकते हैं? हम बाहर की चीज़ें सजा संवार के बड़े खुश होते हैं, बड़े नेक हैं, बहुत अच्छा घर सज गया, कोई मेहमान के आने का सुनते हैं 1 घंटे 2 में सारे घर को साफ टाइडी अप कर देते हैं, उसके जाते ही क्या होता है, 2 दिन नहीं गुजरते, एक ही दिन गुजरते सब चीज़ें वापस। वजह क्या कि चीज़ें हम छुपा देते हैं, कोनों में डाल देते हैं, ज़रूरत की भी चीज़ें छुप गई, रात को बिस्तरों की ज़रूरत पड़ी फिर निकाले सब गंदा। और एक वो सफाई होती है जो डिटेल से होती है, पहले आप अंदर से अलमारियाँ खोलते हैं, फालतू चीज़ें निकालें, जब सारा गंदबला निकल जाता है तो आपका घर 1 महीना भी साफ रहेगा। आज दुनिया में भी यही हालात है कि बाज़ दफ़ा हम ज़ाहरी ज़ाहरी बहुत चमक थपक जाते हैं लेकिन अंदर से हमारा मामला बिगड़ा होता है। तो क़यामत के दिन के लिए तैयारी करनी है तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा, अब लिस्ट बदल जाती है। वमन युमिन बिल्लाह, नंबर 1 शर्त, पहली शर्त इस आयत में जो क़यामत के दिन की कामयाबी की है वो क्या है कि अल्लाह पे ईमान। और ईमान क्या है? वही ईमान जिसको ज़ुबान बचपन में सुनते आए, पहला कलमा तैयब तैयब मैंने पाक ला इलाहा इल्लल्लाह, क्या ये है वो? हरगिज़ नहीं। ईमान क्या है? मार्फत, अल्लाह को पाने का एहसास, वो मुझे देख रहा है, उसको मेरे दिल की बातें पता है, उसको मेरे हालात पता है, उसको पता है कि मैं क्या कर रही हूँ, और उसको ये भी पता है कि मैं क्या नहीं कर रही। एक खामोश शहदो पैमान का नाम मार्फत है, अल्लाह की मौजूदगी के एहसास का नाम मार्फत है, कि जिसमें एक बंदा अपने आप को आगे से आगे ले जाता है कि मेरा रब जो है वो मेरे ऊपर गहरी नजरें रखा हुआ है। फिर बंदा क़यामत के दिन की कामयाबी की तलब करता है, ना देखी हुई ज़ात को देखने लग जाना, सिर्फ रब को नहीं देखना, रब को नहीं मानना, रब की बात को भी मानना है, ये सब चीज़ें अल्लाह पे ईमान के अंदर आती हैं। इस पे अल्हम्दुलिल्लाह इस साल अल्लाह ने तौफीक दी, रमज़ान में जो ताक रातें थी उसमें ईमान के नाम पे एक सीरीज़ शुरू की थी कि कौन से ईमान के जोंक हैं, किस चीज़ से हमारा ईमान ख़राब है। 5-6 लेक्चर हुए थे, डेली रात को होते थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप सुनना चाहें तो सुन सकते हैं। उसमें बहुत बारीक बातें हुई थी ईमान पे कि ईमान के हमारी ज़िंदगी पे क्या असर आता है। हकीकत यह है कि ईमान वाली पर्सनैलिटी बिल्कुल फ़र्क होती है। बस तब हम क्या सोचते हैं कि हम किताबों से इल्म लेंगे, एक ही किताब है, आप जितने लोग हैं उन सब के हाथ में दे दी जाए, क्या ख्याल है हर बंदा उस किताब को पढ़कर मोमिन बन जाएगा? वल्लाह ही नहीं बनेगा। ज़ालिकल किताब ला रईब फ़ीह हुदल्लिल मुत्तकीन, अल्लाह तो दुनिया की बेहतरीन किताब के बारे में ये फरमा रहा है कि किताब तो हुदल्लिल नास है लेकिन मिलेगी हिदायत हिदायतिल मुत्तकीन, तकवा वालों को मिलेगी। यानी तकवा की मौजूदगी हिदायत के बढ़ाने या कम होने का जरिया है। बिल्कुल इसी तरह से अल्लाह पर ईमान लाने की नीयत से किसी किताब का पढ़ना, किसी बात का सुनना, किसी जगह जाना आना पढ़ाना फिर फायदा देता है। सिर्फ बातों से कुछ भी नहीं होता। बड़ी अच्छी बात कहीं पड़ी कि जो बातें अच्छी करते हो तो फिर अमल भी अच्छे करो, वरना तो लोग खूबसूरत बातें दीवारों पे लिखी हुई भी पढ़ लेते हैं, राइट? तो असल में किताब से इल्म नहीं मिलता, किताब पढ़ाने वाले से इल्म मिलता है। कभी आपने ये बात सोची? मैं अक्सर ये बात सुनती सोचती भी हूँ और इर्द गिर्द देखती भी हूँ कि कोई बंदा बात करता है तो उसकी बात ऐसे लगता है सीधी दिल पे जा रही है, और दूसरा बिल्कुल उतनी ही खूबसूरत बातें यानी पॉइंट्स और सब कुछ करता है लेकिन बात ऊपर नहीं दिल पे गुजरती। कौन सी चीज़ है जो दूसरों के ऊपर आपका असर डालेगी, वो आपका ईमान है। इसलिए ये देख लो कि किससे इल्म हासिल कर रहे हो। इसलिए कि बस बेअमल लोग जब इल्म फैलाते हैं ना तो उनका अमल जमा नहीं होता, मल्टीप्लाई होता है। लोग कहते हैं जब वो जो दीन पढ़ा के ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, जब उनके घरों में ऐसी चीज़ें आती जाती हैं तो हमारे क्यों नहीं आ सकती, भाई वो अपने बच्चों की शादी ऐसे कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, जब वो कहते हैं कि यहाँ रह के एक घर सूद पे ले लो तो हम क्यों नहीं ले सकते। इस तरह का कौलो फेल का तजाद उम्मत को मूंड के रख देता है। इस पे 2-4 दिन पहले मैंने लंदन में भी एक दर्स दिया कि किस तरह से एक इंसान गलत फैसला करके चल पड़ता है। होता क्या कि बाज़ दफ़ा एक इंसान दूसरे की सुनी हुई बात को आगे पहुंचाता है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स से क्लासेस में बात सुनते हैं और हकीकत है कि जब दर्द से बात की जाती है तो बात समझ आती है। वो कहते हैं हम यही बात जाके घर में हम बताते हैं दूसरों को तो इतना असर नहीं होता, बताते हुए मैं खुद भी लग रहा होता है कि जो हमारे दिल की हालत थी वो इनकी नहीं हुई। वजह क्या है? वजह लफ्ज़ नहीं होते। आप लफ्ज़ ब लफ्ज़ किसी का सुन के कॉपी करके जाके आगे दूसरे को डिलीवर कर दें, वो लफ्ज़ तो अगले तक पहुंच जाएंगे, तासीर आपके अमल की पहुंचेगी। असल चीज़ तासीर है। इसलिए हमारे असलाफ जो थे वो सिर्फ इल्म वालों से इल्म नहीं सीखते थे, तकवा वालों से, अमल वालों से, यूमिन बिल्ला वालों से। अब्दुल्ला बिन मुबारक का नाम सुना होगा, इमाम बुखारी रहमहुल्ला का नाम सुना हो। अब अगर मैं उस तरफ चल पड़ी तो फिर ये कामयाबियों के असल नुमाइंदे हमें दिखेंगे कि आखिर ये लोग क्यों कामयाब होते थे। इल्म तकवा, वो इल्म को इतना नहीं बढ़ाते थे जितना तकवा को बढ़ाते थे, ईमान को बढ़ाते थे, तरबियत को बढ़ाते थे। उनकी ज़िंदगी में सिर्फ डिलीवर नहीं होता था, एक्सेप्टेंस भी देखते थे कि हम जो चीज़ डिलीवर कर रहे हैं वो अगला एक्सेप्ट भी कर रहा है कि नहीं। करने वाला तो खूबसूरत लफ्ज़ बोल दे लेकिन ना माहौल वो है, ना हालात वो हैं, एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। तो सबसे बड़ी चीज़ जिसको मैं और आप अपनी ज़िंदगी में हिस्सा डालें, चाहते हैं ना कि कामयाब माँ बने, ये तो हम में से अक्सर की लीस्ट प्रायोरिटी है ही ना। चले बच्चे नहीं है आपके पास अभी तो बीवी, कामयाब बीवी बनना चाहते हैं ना, शादी नहीं हुई छोड़ दीजिए, कामयाब बेटी तो बनना चाहते हैं ना। कम अज़ कम हम में से हर सिस्टर किसी की बेटी तो है ना, अगर बहन नहीं, भाभी नहीं, खाला नहीं, पुप्पो नहीं, ये तो कोई नहीं कह सकता मेरे समेत आप में कि हम बेटी किसी की नहीं, या कोई मर्द सुने तो ये नहीं कह सकता कि मैं किसी का बेटा नहीं। तो कामयाबी का लफ्ज़ हम सब के लिए इतना अट्रैक्टिव लफ्ज़ है, कामयाब 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 कौन, लेकिन असल में कामयाबी का जो रूट कॉज है ना वो यूं में मिल रहा है। एंड पे लिस्ट जो लिखाऊंगी तो उसमें आपको ये सारे पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन मेरी आदत है कि मैं अपने दिल से जो बात होती है ना वो ज़्यादा अच्छी तरह कर सकती हूँ। पॉइंट्स नुक्ते लिखाने में बाज़ दफ़ा स्पिरिचुअलिटी ख़त्म हो जाती है, वो एक डिक्टेशन होती है, आपकी सारी तवज्जो होती है, हम लिखें, पॉइंट मिस हो गया, आगे चला गया, हो गया, ये सारे नुक्ते आपको पॉइंट्स में मिल जाएंगे इंशाल्लाह। एंड पे सबसे बड़ी बात ये कि आप कामयाब होना चाहते हैं तो ईमान लेके आए, قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. یومن باللہ، اسی کے اندر پھر آگے تزکیہ کی بات آتی ہے، اور اس کے بعد وہ یا عمل صالحن، عمل صالح، جتنا زیادہ ایک بندہ عمل صالح کرے گا اتنا زیادہ کامیاب ہوگا. آپ دیکھیے کہ دنیا کی کامیابیاں کافر فاسق کی دنیا تک رک جاتی ہیں، ایمان والے کی کامیابی اصل کیا ہے کہ اس کو آخرت میں کامیاب ہونا ہے. اس کی مثال ایسی ہے کہ ہم میں سے کوئی یہ نہیں چاہتا کہ میڈیکل کے پہلے سال میں کامیاب ہو جاؤں، دوسرے میں نہ ہوں. کوئی چاہتا ہے ہم میں سے؟ نہیں چاہتا. تو آپ دیکھیے کہ یومن باللہ ہی کے بعد وہ یا عمل صالحن، عمل صالح کرنا. عمل صالح کیا ہوتا ہے؟ لیسٹ، جس کا آپ کہنا کہ سب سے چھوٹا لفظ ہے جس میں پوری شریعت آ جاتی ہے. اور آپ قرآن پاک میں کھول کے دیکھیے، بارہا آپ کو یہ لفظ ملے گا. سورۃ اثر میں تو مثال ہی کھول کے دے دی نا، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. بس اتنی بات کہہ کے آگے چھوڑ دیا. ہم کہتے ہیں دیکھو اس میں تو کچھ بھی نہیں، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے. عمل صالح کیا ہے؟ دو جس کی شرائط ہیں، نمبر ایک الاخلاص للہیت، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے وہ کام ہو، جس کے اندر نیت بھی ہے، جس میں انسان کا ریوارڈ لینے کا درجہ کہ میں کس سے اس کا ثواب لینا چاہتے ہوں. اور دوسری شرط، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. وہاں جو لفظ اسوہ حسنہ ہے نا، وہی لفظ ادھر سوالے میں دکھتا ہے کہ طریقہ سنت کا ہو. ضرورت تو بہت ہے لیکن جا نہیں سکتے، اس پہ الگ سے الحمدللہ نیکی کیا ہے یا نیکی کی اقسام. لیکن یہاں اگر آپ دیکھیں کہ یومن باللہ کے بعد، اللہ پہ ایمان، تعلق باللہ کے بعد، عمل صالح کی بات کر کے ختم کر دیا، ساتھ ہی خوشخبری دے دی، یکفر عنہ سیئات، ہم اس کی برائیاں اس سے دور کر دیتے ہیں، یعنی اس کی زندگی کے سارے شارٹ کمنگز، اس کی پریشانیاں، وہ سب ختم کر دیتے ہیں. اور وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور ان کو اس جنت میں داخل کر دیتے ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں. کب تک؟ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں. ذالک الفوز العظیم، یہ ہے سب سے بڑی کامیابی. یہ دیکھیے یہ لفظ آ گیا سکسیس کا، فوز، فوزیہ، یہ ہے اصل کامیابی. دنیا کی کامیابیاں ادھوری کامیابیاں ہوتی ہیں، آخرت کی کامیابی مکمل اور پوری کامیابی ہے. ہم کیا چاہتے ہیں؟ مکمل کامیابی، دنیا بھی اچھی، آخرت بھی اچھی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ وہ بندے کو دنیا کی کامیابی کے بعد ہی آخرت کی کامیابی دیتا ہے. تھوڑا سا ایک اب اینگل اور دیکھتے ہیں ڈیفرنٹ. مقصد وہ چیز ہوتی ہے جو بندے کو جوڑتی ہے. کئی فائدے ہو سکتے ہیں، کوئی پیسے کے لیے کام کرتا ہے، یہ بھی مقصد بدل گیا. حتیٰ کہ ہوتا کیا ہے، جو آج اس وقت امت مسلمہ کا ایک بہت بگ بگ پرابلم ہے، اور وہ کیا ہے، کام جب شروع ہوتا ہے کہیں بھی تو وہ دین کے نام پہ ہوتا ہے، دین کے جذبے سے ہم ابھرتے ہیں. فی سبیل اللہ، الحمدللہ، کوئی تحریک جب بھی شروع ہوتی ہے، چاہے وہ کوئی نام بڑا ہو یا چھوٹا ہو، وہ آپ دیکھیں کہ عموماً دو چار لوگوں سے شروع ہوتی ہے. کسی کمرے میں بیٹھ کے وہ اصلاح کی نیت سے کچھ کوشش کرتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ تنہا چلے تھے اور قافلہ بنتا گیا. یہی کیفیت ہے نا. لیکن یاد رکھیے کہ جب شروع میں دین کے نام کے اوپر اٹھتے ہیں تو اللہ کی مدد آتی ہے، اور آپ دن دگنی رات چگنی ترقی کرتے ہیں، فلرش کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں شروع میں تو میری کلاس میں دو لوگ آتے تھے، اب چار آ گئے، اب چھ آ گئے، آٹھ آ گئے، دس آ گئے. اب آپ کیا سوچتے ہیں کہ یہ میری کوششیں اتنی نہیں ہیں جتنی برکت ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کی نیت کیا تھی، یجاہدون فی سبیل اللہ. دوسرا، اس کا کل بھی اس میں بات ہوئی تھی کہ ہی کلمۃ اللہ العلیٰ، اللہ کے کلمے کو بلند کرنا چاہتے ہیں. لیوسخرہ الدین کلی، جب تک کام کرنے والوں کی نیت ٹھیک ہوتی ہے. من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کے لیے ہوگا اللہ اس کے لیے خوب برکت آتی ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ آپ فیل کریں گے اس وقت مجموعی امت مسلمہ کے حالات کو دیکھیں، ایک خاص درجے پہ آ کے ہماری ترقی رک جاتی ہے. جیسے آج 64 ایئر سے اوپر ہو گئے، ہمارے ملک کی ترقی الٹی ہوئی ہے. کیوں ترقی رکتی ہے؟ کامیابی ہوتی ہے شروع میں، لیکن بعد میں تفرقے بازی، اختلافات، سٹے بازی، کوئی ادھر ہو گیا، ایک مسجد بنی بہت ترقی ہوئی، उसी में कुछ अरसे बाद पता चला फूट पड़ गई, एक उधर ग्रो निकल पड़ा, एक उधर निकल पड़ा। वजह क्या है कि मकसद बदल जाता है। बिल्कुल वही मिसाल, एक बॉल रख दे आप इधर फुटबॉल, सारों को कहीं खेलो, आप देखें कि जिधर बॉल है सब उधर है, यूं लटकते हुए जाते हैं। हाथ तो एक ही आता है, लेकिन जिसको मौका मिला उसने जंप भी कर दिया, उसने ठुड्डा भी लगा दिया, जिधर वो चल पड़े। बिलफर्ज लोग कहें कि एक बॉल के पीछे 20 लोग भाग रहे हैं, बेचारे गरीब, एक और बॉल फेंक दो उस कोर्ट में, अब क्या होगा। उनका मकसद, उनका गोल बॉल था, तो किसी को क्या पता ये एक बॉल है या पहला दूसरा। कुछ लोग एक को बॉल समझ के उसके पीछे फिर रहे होंगे, दूसरे उसके पीछे उस कोने में चल पड़ेंगे। दोनों अपनी जगह हक पे हैं, लेकिन थोड़ी देर में होगा क्या कि वो जमात, वो जो टीम है, वो 2 हिस्सों में बढ़ चुकी है। और हो सकता है कि फिर दोनों बॉल एक वक्त पे टकराएं, तो इसका पाँव बॉल पे लगने की बजाय दूसरे के घुटने पे लग जाए। इसको इंतशार कहते हैं। यही आज इख्तलाफ है कि दीन के काम जब इब्तदाई दर्जे पे शुरू होते हैं वो अल्लाह के लिए होते हैं, तो अल्लाह की मदद बहुत आती है। कुछ अरसे के बाद साथियों के गोल बदल जाते हैं, मोटिव बदल जाते हैं। जहाँ फी सबीलिल्लाह होना होता है ना, वहाँ फी सबीली नफसी, मेरा नाम, मेरी जमात, मेरा गिरोह, फिरका, मसलक, मेरी मशहूरी, मेरे लोग बड़े, क्वांटिटी, लोग मुझे पसंद करते हैं, उसको पढ़ते हैं। अब ये सारी बातें आप सबके लिए नहीं है, इसलिए मैं इन पे जाती नहीं, वरना पूरा कोर्स इस पे हम ऑफर करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे अपने रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वो नूरुल्ला नूर में इसमें इतनी डिटेल से पढ़ते हैं, कैसे लगता है कि अंदर से कीड़े निकल रहे हैं। हमने जिसको साफ सुथरा खाना समझ के खाया तो उसमें से कीड़ा निकल आया, और ये सारे कीड़े निकलने यौमुत तगाबन पे यूं निकल निकल के पड़े होंगे कि जो कल लोगों की नज़रों में मुअल्लिम थे वो मुजरिम बन के कटहरों में खड़े होंगे और रोएंगे, काश कुछ हिदायत हमने पाई होती तो हम तुमको भी हिदायत देते, राइट। तो नतीजा क्या निकलता है कि गोल बदला तो रोल बदल गया, फिर जमातें प्यारी हो जाती हैं, कहीं गिरोह प्यारे हो जाते हैं, कोई कहते हैं अच्छा काम कर रहे हैं हम आपका साथ देंगे, शर्त है कि आप उस जमात से हो, उस नाम से हो, कोई उससे हो। अभी बहुत ही रिसेंटली की बात है, एक स्टूडेंट बड़ी दुखी सी मेरे पास आई, कहती कि हमारे इलाके में एक सिस्टर है तो वो कोई क्लास लेती हैं कहीं भी, और आपके वो दौरे कुरान में भी आ चुकी हैं, यानी उनका जो दुख था वो ये था कि वो आपको जानती है, उनको पता है। तो ऐसे ही मैंने एक दिन उनसे फ़ोन पे बात की, तो मैंने कहा कि उस्ताज़ा के वीकेंड फारिग होते हैं तो किसी एक उनकी क्लास शायद वीकेंड पे कहीं होती है, कोई क्लास किसी के घर में लेती हैं। तो कहती कि मैंने उन्हें कहा क्यों किसी दिन हम उनको ना बुला लें इस क्लास में आपकी, तो कहती वो कहेंगी ये कभी नहीं हो सकता, मैंने बड़ी मेहनत करके वो क्लास जमाई है, ना मैं ये चाहूंगी ना घर वाले ये चाहेंगे, यानी हम उनको उधर नहीं आने देंगे। दूसरे लफ्जों में मतलब यह है कि हमारी कीकराई पे पानी पड़ जाएगा। वजह क्या है? एहसास कमतरी। देखिए जो हमने 4 पैसों की चीज़ खरीदी होती है ना, हम उस पर बड़ा टॉर कर रहे होते हैं, और अगर हमें कोई पता चल जाए इसके मुकाबले में असली चीज़ दिखा रहा है तो हम कहेंगे नहीं, मेरी चीज़ का तो वो भी खत्म हो गया। तो उनको गुस्सा इस पे था कि ये कैसे घुटे हुए दिल वाली औरत है, ये दीन सिखा रही है, ये लोगों को दीन कौन सा सिखाएंगी, कि किसी का एक लेक्चर सुनने से क्या अगर आपकी क्लास टूट जाती है तो फिर आप खुद सोचें कि आप सिखा क्या रहे हैं, इतना कॉम्प्लेक्स। इसके बरक्स सक्सेस वाले कौन होते हैं? हम भी फायदा उठाएंगे, आप भी फायदा उठाएंगे। आप देखिए जिस बंदे ने आगे बढ़ने का आजम छोड़ दिया, अपने आप को मजीद पॉलिश ना करना चाहा, आप किसी दूसरे को उसकी क्लास में बुलाएं ना बुलाएं, उसकी जमात 1-2 साल बाद टूट जानी है। कभी आपने सोचा? ये कोर्स शुरू हुआ था 50 लोग थे, होते होते जूं ही पारे बढ़ते जाते हैं लोग कम हो जाते हैं, इसकी वजह क्या है? लोगों को बुरा हम कहते हैं ना कि हाँ लोग ऐसे हैं, आना नहीं चाहते, असल वजह हमारी नीयतें बदल जाती हैं। तो दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमारी नीयतों को खालिस रखे।